भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है, हालांकि अब नए मामले उतने नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 38,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। केरल में भी स्थिति सुधर रही है। देश में संक्रमण के तीसरे लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का मानना है कि शहर में तीसरी लहर आ भी चुकी है।
मेरा घर, मेरा बप्पा ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है, आ गई है। नागपुर में तो ऐलान किया गया है, तो मुझे लगता है हर एक ने खुद को संभालना चाहिए।
शुक्रवार से गणपति उत्सव की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। किशोरी पेडनेकर कहती हैं कि इस त्योहारी सीजन में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को बढ़ा सकती है। कोरोना के बाद बात किसान आंदोलन की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन अब दिल्ली के बाहर भी फैल रहा है। रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद मंगलवार को किसानों ने हरियाणा के करनाल में महापंचायत की। 28 अगस्त को यहां हुए प्रदर्शन में किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग यहां किसान कर रहे हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रशासन किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा।
हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की, उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा, चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दे, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे।
आगे की योजना के बारे में बताते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं,
पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठें, शांति से बैठें, और यहाँ पे जो हमारा संकल्प लेके हम चले थे, संकल्प था कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे, और तमाम ऑब्स्टेकल्स के बावजूद हमने उस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लिया है। तो पहली हमारी प्राथमिकता है सभी किसानों को बैठाना, यहाँ पे बैठे अपना घेराव कायदे से शुरू करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के बारे में वह कहते हैं,
तो लाइन ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है।
किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत कहते हैं कि अब किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैलेगा।
सरकार जितना जल्दी सुधर जाए, जितना जल्दी सरकार बातचीत कर ले, जितना जल्दी सुधर जाए सरकार उतना ठीक है। ये हर जिले में होगा, हर गांव-गांव में होगा, पूरे देश की धरती पर होगा।
कांग्रेस पार्टी भी किसानों की आड़ में सरकार को घेर रही है। हरियाणा और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं,
मोदी जी, खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है, दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते, क्या देश के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है?
10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को गांधीवादी और अहिंसात्मक बताते हुए रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया।
ये कैसा सत्ता का अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री देश के धरती पुत्र पेट पालने वाले किसान से बात नहीं करना चाहते? मोदी जी, सत्ता का अहंकार प्रजातंत्र से बड़ा नहीं, सत्ता की ताकत असल में लोगों की ताकत है। दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे संगठित सबसे अनुशासित और सबसे गांधीवादी आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है।
किसानों का गुस्सा आगामी यूपी चुनाव में असर डाल सकता है। राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ इन किसानों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इस बीच यूपी में अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल कमर कसने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ अब ब्राह्मण वोटों को रिझाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अगर वे सत्ता पर आती हैं तो इस बार मूर्तियां लगवाने की बजाय विकास पर जोर होगा।
जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता है, जबकि खुद ओवैसी कहते हैं कि उनकी पार्टी भाजपा को हराने के लिए ही आई है।
हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह।
और चलते चलते बात पश्चिम बंगाल की, जहां तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार में कोई कमी नहीं आ रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध एक शिकायत चुनाव आयोग से की है। ममता बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता शिशिर बजोरिया कहते हैं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, जो वे इस उपचुनाव में जीत हासिल कर बनना चाहती हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी जा सके। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।